बाण भट्ट की आत्मकथा कथामुख। बाण भट्ट की आत्मकथा। ततः समुच्छिप्य धराम सुदृष्ट्या महावराह स्फुट पद्म लोचन रसातलादुत्पल पत्र सन्निभि समुत्थितो नील युवा चलो महान जलौघ मग्ना सचराचरा धरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्रिता एन वराह रूपिणा समय स्वयं भूर भगवान प्रसीद तु। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने से पूर्व उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों में मुझे उनकी केवल एक ही चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से संबद्ध होने के कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आई और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रही। यहाँ आकर उन्होंने बंगला का भी अभ्यास किया था, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे, दीदी अर्थात दादी। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग आए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझे। बंगला में दीदी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थी। हम लोगों पर, विशेषकर मेरे ऊपर, दीदी का स्नेह नाती के समान ही था। दीदी बहुत भोली थी। अपनी कष्ट साध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटती तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती और उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे से उनकी जेब से एक सफेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब वह बिल्लोटा कूद जाता और हम लोग मानो अचकचा कर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं से कुछ दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका वली कुचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई हैं। उधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते, धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ियां चली जाती, कुत्ते उछल कूद से शुरू कर लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते, पर दीदी कर्पूर प्रतिमा की भांति निर्वाक निश्चल निष्पंद ही रहती। उनकी समाज टूटती तब उनकी बातें सुनने लायक होती। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी। उनके चेहरे से ऐसा जान पड़ता था कि बुद्ध देव से उनकी जरूर भेंट हुई होगी। मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वे थकी हुई थी, पर यह कहना नहीं भूली कि उन्हें राजगृह में एक सियार मिल गया था, जो उन्हें देखकर 3 बार ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि वह बुद्ध देव का समसामयिक था और उसी युग की कोई बात कहना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुणा भाव देखा था। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो उस श्रीकाल के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, सियार की बात कल होगी। दीदी ने भाव विह्वल होकर कहा, हाँ रे, थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख, इस बार स्वर्ण नद के दोनों किनारे की पैदल यात्रा कर आई हूँ। मैं अचरज में आ गया, स्वर्ण नद? हाँ रे, स्वर्ण नद। कुछ मिला है दीदी? बहुत कुछ, कल आना। मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया, आहार के समय एक बार लौट कर फिर आया, सोचा इसी समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर देखा दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नील वर्ण से के अच्छोत सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में एक दो मेघ शीर्ष दिन भर के थके मादे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाज की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी शून्यता को समाज शून्यता को समता दे रहा था। मैं सचमुच चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन शाम को दीदी के स्थान पर पहुंचा। नौकर से मालूम हुआ कि उस रात को दीदी 2 बजे तक चुपचाप बैठी रही और फिर एकाएक अपनी टेबल पर आकर लिखने लगी। रात भर लिखती रही और लिखने में ऐसी तन्मय थी कि दूसरे दिन 8 बजे तक लालटेन बुझाए बिना लिखती रही। फिर टेबल पर ही सिर रख कर लेट गई और शाम के 3 बजे तक लेटी रही। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रही हैं। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी, मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे ही खोज रही थी। स्वर्ण यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतर मैंने कर लिया है, तू इसे एक बार पढ़ तो भला, देख मेरी हिंदी में जो गलती हो उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले, ले भला। यह ले भला दीदी का स्नेह संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होती तो उन्हें कुछ देते समय कहती जाती, ले भला। आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी 200 मील की पैदल यात्रा का सुपरिणाम है। फिर कहने लगी, तू इसे आज ही रात को ठीक कर ले और कल 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ले, परसों मुझे इसकी कापियां मिल जानी चाहिए। मैंने सोचते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना, तू बड़ा आलसी है। देख रहे, बड़े दुख की बात बता रही हूँ, पुरुष का जन्म पाया है, आलस छोड़कर काम कर, स्त्रियां चाहे भी तो आलस्यहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब काम करने की ताकत थी, अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया और न शक्ति ही। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा, पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं। तू समझता है यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं? गलत बात है, हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता जरूर कम है पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखते हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई हैं और उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है पर बात निकल नहीं रही है, जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों से पानी की धारा झर रही थी और वे उसे पोछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही है। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी आजकल स्वर्ण में नावें चलती हैं? दीदी ने मुस्करा दिया। उसका भाव था कि मैं समझ गई तो मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। फिर बोली, देख मैं यहाँ ज्यादा ठहर नहीं सकती, इस अनुवाद को तू जरा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला, एक दो चित्र भी पुस्तक में देने होंगे, जा जल्दी कर। कागजों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमजोर हैं और रात को काम करना मेरे लिए कठिन है, फिर भी दीदी के कागजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिखे थे। बाणभट्ट की आत्मकथा, तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी है। मैंने ध्यान से सारी कथा पढ़ गया, मुझे अपार आनंद आ रहा था। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज प्राप्त हुई है। रात यूं ही बीत गई। सवेरे मैं कलकत्ते को रवाना हो गया, वहाँ एक सप्ताह रुकना पड़ा। लौट कर आया तो मालूम हुआ कि दीदी काशीवास करने चली गई है, किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई। 2 साल तक वह कथा यूं ही पड़ी रही। एक दिन मैंने सोचा कि बाणभट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितनी प्रामाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें थी जो उन पुस्तकों में नहीं है। इनके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और फुटनोट में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वे मेरे हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण है, टिप्पणियां तो उसकी प्रामाणिकता की सबूत हैं। बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैं अब उनके दर्शन की आशा छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगल सराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। वे गाड़ी बदल रही थी और बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। मुझे देखकर वे जरा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांटकर कहती रही, संभाल के ले चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी है, फिर मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं? वाह रे, दीदी रुक गई, बोली, देखो मैं बहुत दुखी हूँ, वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों क्या हुआ? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली, देखना 5 बच्चे दिए हैं, मैं कहाँ तक संभालूं? मैंने बात काट कर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे पास ही पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं, गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंक कर कहा, मैं देश जा रही हूँ, ले मेरा पता, ले भला। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाण भट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ, दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात यह है कि बाण भट्ट की अन्य पुस्तकों की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण ही है।